प्रिय श्रोताओ, साप्ताहिक कार्यक्रम ईश्वरीय वाणी की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में हाजिर हैं। आज हम पवित्र कुरान के सूरह गाशिया और सूरह फज्र के बारे में चर्चा करेंगे। स्वाति और मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए।
सूरह गाशिया पवित्र कुरान का सूरह नंबर 88 है। यह सूरह मक्के में नाजिल हुआ था और इसमें 26 आयतें हैं। इस सूरह में तीन विषयों पर बल दिया गया है, एक ईश्वरवाद, प्रलय और पैगंबरी। प्रलय के दिन की विशेषता, ईश्वरीय नेमतों का उल्लेख, प्रलय में अच्छे और बुरे समूह की दशा, एकेश्वरवाद की निशानियां, महान ईश्वर की शक्ति व महानता, ईश्वरीय दूतों के दायित्व और लोगों के मार्गदर्शन में उनकी भूमिका, वे विषय हैं जिनकी इस सूरह में चर्चा की गई है।
इस सूरह के आरंभ में हम प्रलय के एक अन्य नाम गाशिया को पढ़ते हैं और गाशिया इस सूरह का नाम भी है। महान ईश्वर कहता है, क्या तुम्हें छा जाने वाली घटना की खबर है? गाशिया गेशावा शब्द से बना है जिसका अर्थ छा जाना है। प्रलय के लिए इस नाम के चयन का कारण यह है कि उस दिन की भयावह घटनाएं सर्वव्यापी होंगी, यानी हर जगह, हर व्यक्ति और हर चीज पर छा जाएंगी। आयत इस संदेश के साथ इस बात को बयान करती है कि प्रलय के दिन पापियों व अपराधियों की स्थिति किस प्रकार होगी, और आयत दो प्रकार के विभिन्न लोगों की दशा का चित्रण करती है। पहले उन लोगों की दशा का चित्रण है जिनके सिर लज्जा से झुके होंगे और उनके पूरे अस्तित्व में भय, अपमान और दंड समाया होगा। और चूंकि इंसान की आत्मिक स्थिति हर जगह से अधिक चेहरे से स्पष्ट होती है, इसलिए ये भय और अपमान उनके समूचे चेहरे से दिखाई देगा। ये वे लोग होंगे जिन्होंने इस दुनिया में बहुत अधिक प्रयास किए हैं, परंतु थकावट के अलावा उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। उनके पास न ईमान होगा और न महान ईश्वर की बारगाह में स्वीकारी अमल। इस प्रकार वे उस संपत्ति को भी अपने साथ नहीं ले जा सकेंगे जिसे उन्होंने इस दुनिया में संचित किया था। उनके पास कोई भला कार्य नहीं होगा। वे थके हुए परिश्रमी हैं, परंतु उन लोगों का दंड यहीं पर समाप्त नहीं होगा, बल्कि जब वे नरक की आग की गर्मी से प्यास से तड़प रहे होंगे तो उन्हें बहुत ही गर्म सोते का पानी पीने के लिए दिया जाएगा।
महान ईश्वर पवित्र कुरान के सूरह गाशिया की 6 और 7 आयत में कहता है, उनके लिए कोई खाना नहीं होगा सिवाय एक प्रकार की जरी के, जो सूखा, कड़वा और बदबूदार कांटा है। यह अपमानजनक चेहरे हैं जिन्होंने अत्याचार और दूसरों के अधिकारों पर अतिक्रमण से इस दुनिया में नाना प्रकार के खाने खाए और इस बात की अनुमति नहीं दी कि वंचित लोग घटिया चीज़ों व खानों के अतिरिक्त कुछ और खाएं। नरक में उन्हें जो खाना मिलेगा वह उन्हें भूख से मुक्ति नहीं दिलाएगा।
प्रलय में एक दूसरा दल होगा जिसके चेहरे खिले व प्रफुल्लित होंगे, अपराधी व बुरे लोगों के चेहरों के विपरीत। इन लोगों ने इस दुनिया में जो प्रयास किए हैं उससे वे प्रसन्न होंगे। हमने कहा कि नरक में जाने वालों को इस दुनिया में किए गए प्रयास के बदले में थकावट के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिलेगा, जबकि स्वर्ग में जाने वाले सर्वोत्तम रूप में अपने प्रयास का परिणाम देखेंगे और वे पूरी तरह प्रसन्न होंगे। जो प्रयास उन्होंने किए हैं, महान व कृपालु ईश्वर उसका बदला कभी 2 और कभी 10 और कभी उससे अधिक देगा। इसी प्रकार महान ईश्वर कभी उनके अच्छे कार्यों का बदला बेहिसाब देगा, यानी इतना अधिक होगा कि उसका हिसाब किताब नहीं होगा। स्वर्ग में रहने वालों का स्थान बहुत ही ऊंचा व अच्छा होगा। वहाँ वे किसी प्रकार की निरर्थक बात नहीं सुनेंगे। निसंदेह इस प्रकार की जगह बहुत ही शांतिदायक और दिल को लुभाने वाली होगी। अगर सही तरह से सोचा जाए तो हम देखेंगे कि दुनिया में दुखों के महत्वपूर्ण भाग का कारण पीड़ादायक और दुख पहुंचाने वाली बातों का सुनना है, और इस प्रकार की बातों से इंसान की आत्मिक शांति छिन जाती है और सामाजिक व्यवस्था को आघात पहुँचता है और बुराई की आग भड़क जाती है।
इस सूरह की दूसरी आयतें इसी प्रकार इंसान का ध्यान महान ईश्वर के अस्तित्व और आसमान और ज़मीन में उसकी निशानियों की ओर केंद्रित कराती है। आसमान जो प्रकाश का केंद्र है, जमीन जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के रहने और विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का केंद्र है, और ऊंट जैसे पशु आदि सब महान ईश्वर की निशानियां हैं, और उसने इन सब को इंसान के अधिकार में दे रखा है। इन विभिन्न प्रकार की नेमतों के बारे में चिंतन मनन इंसान को इन नेमतों के जनक व दाता का शुक्र अदा करने के लिए प्रेरित करता है, और नेमत का शुक्र अदा करना इंसान को नेमत देने वाले की पहचान प्राप्त करने के लिए आमंत्रित करता है। इस प्रकार का बयान कि महान ईश्वर ने आसमान, जमीन, पहाड़ और जानवरों को किस लिए और किस प्रकार पैदा किया है, इस बात का सूचक है कि इस ब्रह्मांड को अकारण पैदा नहीं किया गया है और इंसान को भी किसी उद्देश्य से पैदा किया गया है।
सूर्य गाशिया में महान ईश्वर पैगंबर इस्लाम को संबोधित करते हुए कहता है, हे पैगंबर, लोगों को सृष्टि के उद्देश्यों से अवगत कराइए और उन्हें ईश्वर के सामीप्य का रास्ता बताइए। अलबत्ता परिपूर्णता का मार्ग उस समय तय होगा जब इंसान उस पर अपनी इच्छा व इरादे से चलेगा। इस आधार पर महान ईश्वर पैगंबर इस्लाम से कहता है, आप कदापि लोगों को इस कार्य के लिए बाध्य नहीं कर सकते, और अगर कर सकते हो तो इस प्रकार के ईमान का कोई लाभ नहीं है। सूर्य गाशिया की 22वीं आयत में हम पढ़ते हैं, उन पर आपका अधिकार नहीं है, यानी आप उन्हें ईमान के लिए विवश नहीं कर सकते। सूर्य गाशिया की अंतिम आयत महान ईश्वर की ओर लौटने और प्रलय के दिन के हिसाब किताब पर बल देती और कहती हैं, निश्चित रूप से सबकी वापसी हमारी ओर है और निश्चित रूप से उनका हिसाब किताब भी हमें करना है।
फज्र भी पवित्र कुरान का एक सूरा है और बहुत से दूसरे सूरों की भांति उसकी आयतें छोटी है। यह सूरा भी मक्के में नाजिल हुआ है। इस सूरे की कुछ आयतों में जहां डराया गया है, वहीं कुछ आयतों में शुभ सूचना भी दी गई है। इस सूरे के आरंभिक भाग में हम ऐसी कसमों को देखते हैं जो अपने आप में अभूतपूर्ण और वे अत्याचारियों को नरक की आग से डराने की भूमिका है। इसी प्रकार इस सूरे की आरंभिक आयतों में इस बात की ओर संकेत किया गया है कि ईश्वर ने आद, समूद और फिरौन जैसे पहले की कौमों और व्यक्तियों से कड़ा बदला लिया है। इसी प्रकार इस सूरे की आरंभिक आयतों में इंसान की परीक्षा, अच्छे कार्यों में इंसान की लापरवाही, प्रलय, अपराधियों और काफिरों का अंजाम और संतुष्ट आत्मा वाले मोमिनों को महान प्रतिदान वे विषय हैं जो इस सूरे की आयतों में बयान किए गए हैं।
सुबह की कसम, 10 रातों की कसम, सम विषम की कसम, सूरह फज्र की आरंभिक कसमें हैं। भोर का समय ईश्वर की महानता, प्रकाश के आरंभ और अंधकार की समाप्ति का चिन्ह है। भोर का समय प्राणियों के सोने के समय की समाप्ति और उनकी गतिविधियों के आरंभ होने का समय है। भोर का समय रात के अंधेरे को समाप्त करने वाला, ब्रह्मांड में प्रकाश बिखरने वाला और जीवन को परिवर्तित करने वाला है। इस आधार पर इस्लाम भी सुबह व भोर का उजाला था, क्योंकि अज्ञानता के काल में उसका उदय हुआ था। इसी प्रकार महामुक्तिदाता हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के प्रकट होने को भी सुबह व भोर का एक नमूना समझा जाता है। इसी प्रकार कर्बला के मैदान में 10वीं मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इतिहास में कुफ्र, अज्ञानता और अत्याचार के विरुद्ध होने वाले समस्त आंदोलनों को नई सुबह समझा जाता है। यहाँ तक कि पापी के दिल में जलने वाली उस पहली चिंगारी को भी भोर कहा जाता है जो उसे अपने पापों से प्रायश्चित करने के लिए आमंत्रित करती है।
सूरह फज्र की 15वीं और 16वीं आयतों में इंसान के इम्तहान के विषय के बारे में चर्चा की गई है। इंसान के जीवन में परीक्षा ईश्वरीय पुण्य और दंड का मापदंड है और यह जीवन का महत्वपूर्ण मामला है। इन आयतों के आधार पर जब महान ईश्वर इंसान की परीक्षा लेता है और उसे नेमतों से नवाजता है तो इंसान घमंडी हो जाता है और कहता है कि ईश्वर ने मुझे नवाजा है। परंतु जब परीक्षा के उद्देश्य से महान ईश्वर इंसान की रोजी को तंग व कम कर देता है तो वह निराश हो जाता है और कहता है, ईश्वर ने मुझे अपमानित किया है, जबकि वह इस बात को नहीं जानता कि ईश्वरीय परीक्षा में उसकी परिपूर्णता का रहस्य निहित है। महान ईश्वर अपनी तत्वदर्शिता के अनुसार हर गुट की परीक्षा किसी चीज से लेता है, कभी नेमत देकर तो कभी मुसीबत में गिरफ्तार करके इंसान की परीक्षा लेता है। महत्वपूर्ण यह है कि नेमतों से संपन्न होना या उससे वंचित होने को महान ईश्वर से निकटता या उसे दूरी का चिन्ह नहीं समझना चाहिए, बल्कि हर जगह इंसान की श्रेष्ठता का मापदंड तकवा अर्थात ईश्वरीय भय है।
इसी प्रकार फज्र की 17वीं और 18वीं आयतों में महान ईश्वर से दूरी और मुसीबत के कारणों पर ध्यान दिया गया है। महान ईश्वर फरमाता है, कदापि नहीं, बल्कि तुम अनाथ का सम्मान नहीं करते हो और न मोहताज को खाना खिलाने के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हो। निसंदेह केवल अनाथों की भूख का मामला नहीं है, बल्कि उससे भी महत्वपूर्ण उनकी भावनात्मक ज़रूरतों की पूर्ति है। अनाथ का सम्मान किया जाना चाहिए ताकि वे माता पिता की कमी का आभास न करें। इसी कारण अनाथों का सम्मान और उनसे प्रेम ईमान की मजबूती और सफलता का कारण है। सूरह फजर की अंतिम आयतों में महानेश्वर मुतमईन व संतुष्ट आत्मा और उन मोमिनों का उल्लेख करता है जिन्हें बड़ी घटनाओं और विपत्तियों के मध्य भी शांति प्राप्त होती है और उन पर अपनी कृपा दृष्टि करते हुए वो उन्हें संबोधित करता और फरमाता है, हे संतुष्ट आत्मा, अपने पालनहार की ओर लौटा इस हालत में कि तू उससे राजी है और वो तुझसे राजी है, तो मेरे बंदे में शामिल हो जा और मेरे स्वर्ग में दाखिल हो जा।
इन सुंदर शब्दों में महान व सर्वसमर्थ ईश्वर ने सीधे रूप से उन आत्माओं को निमंत्रित किया है जो ईमान की छाया में संतोष व शांति के चरण तक पहुँच गई है। ऐसा निमंत्रण जो पालनहार से वास्तविकता प्रसन्नता के साथ है और उसके बाद वह अपने बंदे के सिर पर बंदगी का मुकुट रखता है और उसे अपनी बंदगी के पावन वस्त्र से गौरवान्वित करता है। इसी प्रकार की आत्मा ईश्वरीय वादे पर संतुष्ट है और विभिन्न प्रकार की मुसीबतों व घटनाओं और सबसे बढ़कर प्रलय के दिन की व्याकुलता व भय के वातावरण में भी उसे शांति प्राप्त रहेगी। प्रिय श्रोताओं, आज के कार्यक्रम को इस आशा के साथ समाप्त करते हैं कि महान ईश्वर हमें भी इस प्रकार की शांति प्रदान करेगा ताकि हम भी उसके संबोधन के पात्र बन सकें।